एक भजन गाएंगे, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है।
ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार पतित पावन तुम बिन के हो नाय, जहर निकट गेले पाप दूरे जाय, जहर हे मन दयाल प्रभु के बको थपा, गंगार परश हैले पश्चाते पावन, गंगार दर्शने पवित्र कर तुमार गो, हरि स्थाने आप राधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने तुम स्थाने आप राधे नाही परित्राण, तुमर हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुमर हृदय गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परां, प्रतिजन्मे करी आशा चरणे रधूले, नरोत्तम कर दया अपनार बोली, हे भर करुणा कर वैष्णव गोसाई बर कर पतित पावन तुम बिन के होना पतित पावन तुम बिन के होना वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र षट्श श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की श्री नरोत्तम दास ठाकुर की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, थोड़ी बहुत चर्चा उनके विषय में करेंगे। आचार्य भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम सब जानते हैं कि ज्ञान ये आचार्यों के द्वारा हम तक आता है, भगवान की कृपा ये आचार्यों के द्वारा हम तक आती है। तो बिना आचार्यों के भगवान की लीलाओं को समझना, भगवान की लीला स्थलियों को समझना इस संभव नहीं है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि 6 गोस्वामियों को महाप्रभु ने आदेश दिया था ग्रंथ लिखें, अर्थात आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान प्रदान करें, लीला स्थलियों की खोज करें या उनको पुनः स्थापित करें, क्योंकि लीला स्थलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अन्यथा भगवान की कथाएं हमारे लिए कल्पना हो जाएंगी, लेकिन जब हम उस स्थान में जाते हैं, उस बताते हैं कि ये स्थान, यहां पर लीला हुई, यहां भगवान ने ऐसा किया, यहां इसको मारा, तो थोड़ी श्रद्धा बढ़ती है। हम लोगों में उतनी श्रद्धा भी है नहीं, तो इसीलिए बहुत सी चीजें जिनकी श्रद्धा है उनको आवश्यकता नहीं है। जो ये समझ जाएं कि भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, तो उन्हें आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनकी अभी श्रद्धा कमजोर है, ज्ञान दिए हैं, धाम दिए हैं, भक्त दिए हैं, आचार्य दिए हैं, जिनसे हम सब उस स्तर तक पहुंच सकें जहां श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण बहुत सरल हो जाए। इस भौतिक जगत में जब तक हम लोग बने रहते हैं, तब तक भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना संभव नहीं होता। यह कहना चाहिए कि इस जगत में इतना आकर्षण है, कभी कभी मन में आता है कि माया तो भगवान की शक्ति है और भगवान ज्यादा आकर्षक हैं, लेकिन फिर भी हमारा आकर्षण माया की तरफ ज्यादा है। क्या कारण है? क्या माया भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है? माया भगवान से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, बस इतना ही है कि हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवान की ओर ना मुड़कर माया की ओर मुड़ चुके हैं, और इतना आकर्षित हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आता कि सही मार्ग क्या है। और इसीलिए आचार्य गण आते हैं ताकि जीवन के ऊंची अवस्थाओं तक हमें पहुंचा सकें। अपने बल पर संभव नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, अपने बल के ऊपर प्रयास करने पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, छोड़ दिया मैंने भरोसा भी। फिर किस पर है? आपकी कृपा पर, आपके चरणों पर, श्री कृष्ण की कृपा पर। प्रभुपाद भी तो यही लिखते हैं, जब वो जलदूत में जाते हैं तो अपनी कविता में यही लिखते हैं कि मेरी कोई शक्ति नहीं है, आप चाहें तो सब हो सकता है। ये भक्त का भाव है। तो इसीलिए जब ऐसे आचार्य गण इस पृथ्वी पर आते हैं, तो जब तक वे रहते हैं इस पृथ्वी को शुद्ध करते हैं, और जब वे चले जाते हैं तब फिर अपने शिक्षा या अनुयायियों के द्वारा इस आंदोलन को, इस शुद्धता के आंदोलन को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन के। महाप्रभु ने कई बार उनके घोषणा की आने की। ऐसा वर्णन है कि जब लोकनाथ गोस्वामी ये वृंदावन में रहा करते थे, दरअसल लोकनाथ गोस्वामी की बड़ी रोचक जीवनी है, किस तरह महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए लोकनाथ गोस्वामी बड़े आतुर रहते थे। उन्होंने सुना महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, वे भागे मिलने के लिए, महाप्रभु वहां नहीं थे। ये विस्तार से आप सब कथा सुन चुके हैं। फिर वहां नहीं मिले तो और देखा कहां चले गए, अरे जगन्नाथपुरी, वहां आए तो पता चला दक्षिण भारत चले गए, तो फिर दक्षिण भारत के कहीं नहीं मिल रहे। जहां जहां पहुंच रहे हैं तो महाप्रभु पहले से चले गए। अब वृंदावन में है, पता चला प्रयाग के पास आने वाले, मैं प्रयाग जाऊंगा महाप्रभु से मिलने। ये जो आचार्यों की जीवनी होती है, जब हम कथा सुनते हैं तो इनसे उपदेश ग्रहण करने चाहिए अपने जीवन में। कितनी आतुरता थी उन्हें महाप्रभु के दर्शन की। ऐसा नहीं सोचा कि चलो एक बार नहीं, अब क्या कर सकते, भगवान की योजना होगी, चुपचाप बैठ जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा होता है ना, हम कोई कार्य करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं होता, भगवान की इच्छा। ज्यादातर हम लोग अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा बना देते हैं। भक्ति का जीवन है भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना, तो हम लोग उल्टा करते हैं। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी जाने का प्रयास कर रहे थे तो महाप्रभु ने उन्हें दर्शन दिए स्वप्न में और उनसे कहा कहीं जरूरत नहीं है जाने की, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, सदैव तुम्हें दर्शन देता रहूंगा, यहीं रहो। और फिर उन्होंने उस समय कहा था महाप्रभु ने कि आगे चलकर एक राजकुमार आएगा नरोत्तम, तुम उसको दीक्षा देना। तो ये महाप्रभु का आदेश था उस समय। और भी एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब महाप्रभु कीर्तन करते हुए रामकेली में आए थे तो वहां काफी दिन रहे, जहां रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनको मिलने के लिए गए थे, तो काफी दिन रहे। और एक समय कीर्तन करते करते खिचड़ी ग्राम की ओर देखते हुए जोर से नरोत्तम नरोत्तम पुकारने लगे, तो सारे भक्त हैरान हो गए कि कौन है ये नरोत्तम। तो अनुमान लगाना शुरू किया कि निश्चित कोई महान भक्त आने वाले होंगे आगे चलकर। तो इस तरह पहले से नरोत्तम दास ठाकुर के आने की घोषणा हो गई थी, ये प्रमाण था कि वो भगवान के महान भक्त हैं। हम सब की कोई घोषणा नहीं हुई थी आने से पहले, हुई थी क्या? शायद आप लोगों में से किसी की हुई होगी घोषणा आने के पहले कि ये आएंगे, ऐसा होगा। महानता वैसे प्रसिद्धि में नहीं है। जब हम कहते हैं कि इनकी घोषणा हो गई इत्यादि, महानता प्रसिद्धि में नहीं है, महानता भक्ति में है। भक्तों का गुणगान भगवान किसी न किसी तरह करा ही देते हैं, भक्त नहीं चाहते हैं लेकिन भगवान चाहते हैं कि भक्त का गुणगान हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ, माता का नाम था नारायणी और कृष्णानंद दत्त, इनके घर में इनका जन्म हुआ। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, बहुत दान दिए गए, बहुत संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसलिए बहुत सारा उत्सव मनाया गया। और फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो उनका अन्नप्राशन करना था, तो उस समय नामकरण और अन्नप्राशन हो रहा था, तो जो ज्योतिष थे जो कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये बहुत आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा, मनुष्यों में बड़ा श्रेष्ठ मनुष्य है, इसीलिए इसका नाम नरोत्तम दिया जाता है, नरों में जो उत्तम है। और फिर उस समय उनके सामने चावल लाए गए खाने के लिए, और ये वर्णन है कि वो चावल दिए जा रहे थे, वो बार बार मुंह घुमा रहे थे, चावल स्वीकार नहीं कर रहे थे। माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, क्या हुआ? सब लोग वहां चिंतित हो गए, उत्सव मन रहा था, अचानक सब रुक गया कि ये क्या हुआ, बच्चा खा क्यों नहीं रहा है? तो बार बार लाया जा रहा है, वो मुंह घुमा रहे, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया उन्होंने, तो सब हैरान थे क्या हुआ। तो फिर ये जो ब्राह्मण थे इन्होंने बताया कि देखो ये बालक बहुत श्रेष्ठ है, बहुत विशेष बालक है, ये जो आप इसको दे रहे हो चावल, ये भगवान को अर्पित नहीं है, इसीलिए वो स्वीकार नहीं कर रहा है। तो फिर भगवान का अर्पण किया गया, और भगवान को अर्पण करके फिर जब दिया तो तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये बचपन से इनके अंदर ये भगवान के प्रति प्रेम था। भक्तों को भी सीखना चाहिए ना हम सबको कि बिना भगवान को अर्पण किए कुछ नहीं खाना चाहिए। हम लोग कभी कभी कर लेते हैं ना, ऐसे कहते ब्रह्मचारियों को एक इंद्रिय तृप्ति अनुमति है, मगर वो भी प्रसाद होना चाहिए, बाहर नहीं। ये इंद्रिय तृप्ति है ठीक है, लेकिन प्रसाद केवल, बाहर की चीजें नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यात्रा में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो सोचते हैं यहाँ तो सब ठीक है, मंदिर की बात अलग है, यहाँ सब चलता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का स्मरण कर लेना चाहिए, छोटे से बच्चे हैं, उन्होंने नहीं कहा चलता है क्या करें, मेरे पिताजी खिला रहे हैं, खाना पड़ेगा। भगवान का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे, वैसे ये नाम ब्रह्मणी है, कई लोग नमो ब्रह्मणी कहते हैं, ये नाम ब्रह्मणी है, अर्थात चार चीजों में उस व्यक्ति का जिसके पुण्य कम है कभी भी विश्वास नहीं होता, महाप्रसाद में, गोविंद में, भगवान के नाम में और वैष्णवों में। तो इसलिए बड़ा शक्तिशाली है। तो प्रयास करना चाहिए जीवन में। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे हमने कहा ना, जीवनी सुनते जाइए तो उनके जीवन से सीखते जाइए। तो पहली चीज भक्तों को प्रण करना चाहिए कि बाहर का कुछ नहीं, बिना भगवान को अर्पण किए कुछ नहीं खा सकते। श्रील प्रभुपाद ने जब आंदोलन प्रारंभ किया तो एक उनके जहां पर हमारा सेंटर था उसके सामने आइसक्रीम की दुकान थी, तो स्वाभाविक है सभी भक्तों को बड़ा प्रेम होता था आइसक्रीम से, तो वो चले जाते थे खाने के लिए। और वो जो आइसक्रीम की दुकान थी उसमें जो दरवाजे थे वो कांच के थे, मतलब पूरी दीवार कांच की थी, सब अंदर से बाहर दिखता था। तो आइसक्रीम खा रहे होते थे और प्रभुपाद आते थे वॉक करते हुए उस स्ट्रीट से, तो जैसे ही वो लोग प्रभुपाद को देखते थे सब अपना सर झुका लेते थे, प्रभुपाद देखे नहीं कि हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। और प्रभुपाद फिर चले जाते थे, तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि आइसक्रीम खाने में कोई गलती नहीं है। अभी आप लोग मत सोचिएगा कि प्रभुपाद का आदेश है, वो आगे भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा आइसक्रीम खाने में कोई गलती नहीं है, अगर खाना है तो बनाओ, भगवान को अर्पण करो और फिर खाओ। तो ऐसे कई चीजें हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे उनको भूलते जा रहे हैं, हमारे मन में आता जा रहा है कि कोई बात नहीं है प्रचार के नाम पर। हाँ, कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर प्रयास हर समय को इमरजेंसी नहीं बनाना चाहिए हमें। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने इन्होंने लिया नहीं तो बहुत उस समय से उन्होंने दर्शाया कि भगवान के कितने महान भक्त हैं। जीवन में नियमों को कड़ाई से पालन करने से हृदय का शुद्धिकरण जल्दी होता है। जब हम नियमों को कड़ाई से पालन नहीं करते हैं, सोच लेते हैं कि ठीक है नियम है लेकिन शायद मेरे लिए नहीं है, है ना, तो कड़ाई से नियम पालन करने चाहिए। फिर धीरे धीरे नरोत्तम दास बड़े हुए, उनको पाठशाला इत्यादि भेजा गया, बड़ी जल्दी उन्होंने सब कुछ सीख लिया। बड़े मेधावी छात्र थे, बहुत तीव्रता से, और सब कुछ सीखते गए बहुत जल्दी। और उनके शिक्षक भी बड़े हैरान होते थे, बालक कैसे इतना सब सीख लेता, कैसे जानता, जो कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानता है। यस्तम वेद सवेदवित, तो जो कृष्ण को जान गया वो सब जानता। अभी प्रभुपाद का उदाहरण देखिए, किन किन प्रकार के लोगों से मिलते थे। वो तो कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, बहुत बड़े दार्शनिक नहीं थे, तथाकथित प्रसिद्ध दार्शनिक नहीं थे, या कहना चाहिए कि और भी कितने प्रकार के लोगों से मिलते थे, लेकिन बड़े आसानी से प्रभुपाद उन लोगों को अपने जो सिद्धांत हैं उसको, उसके प्रति उनका विश्वास जगा देते थे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण है। तो इसीलिए ज्ञान, सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान है कि हम कृष्ण को जाने, और अगर कृष्ण को जान लेते हैं तो सब कुछ अपने आप आए, ज्ञान देने वाले कृष्ण हैं। तो इसीलिए भक्ति भक्त को केवल भगवान के निकट ही नहीं लाती है, सब प्रकार के ज्ञान को भी प्रदान कर सकती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे बहुत जल्दी अपना उन्होंने पढ़ाई पूरा कर लिया, और अब उनके हृदय में इस भौतिक जगत के प्रति जरा सी भी आसक्ति नहीं थी। उनका मन सदैव कृष्ण में लगा रहता था, महाप्रभु की लीला सतत सुनते रहते थे, क्या हो रहा है, कहां हुआ, क्या लीला, कौन, कोई कोई आकर सुनाते रहते थे, ये लीला की थी एक समय महाप्रभु ने, ऐसे हुआ था इत्यादि। बड़ा प्रेम था उनको लीला सुनने से, और उसी में लगे रहते थे। और यहां उनके माता पिता सोचने लगे कि अब बड़ा हो रहा है, इसका विवाह कर देना चाहिए, तो कोई उनके लिए अच्छी लड़की ढूंढने लगे कि इनका विवाह करेंगे, लेकिन उनको कोई रुचि नहीं थी। उनको रुचि थी जीवन समर्पण करने में, ब्रह्मचारी बनने में, है ना। और उस समय भी आज ही की तरह लोग चाहते नहीं थे कि मेरा बेटा ब्रह्मचारी बने। मेरा बेटा, आज के लोग चाहते मेरा बेटा अमेरिका चला जाए, कोई बात नहीं, शराब पिए, मांस खाए, सारे गलत काम करे, बड़े गर्व से कहूंगा कि मेरा बेटा अमेरिका में शराब पीता है, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए, क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, है ना, लोगों का ऐसा भाव हो जाता है, क्या मुंह दिखाऊंगा। हमारी सभ्यता से हम लोग कितनी दूर आ गए हैं ना, कई संप्रदायों में आज भी लोग संतान उत्पत्ति के समय ऐसा समय चुनते हैं कि उस समय में जो बालक गर्भ में प्रवेश करे आगे चलकर सन्यासी बने, आज भी उनमें है ये भाव। लेकिन हम लोग इतनी दूर आ गए अपनी सभ्यता से कि अगर कोई बालक जीवन समर्पण कर रहा है, अगर कोई बालक भगवान की प्राप्ति के लिए बड़ा विशेष बड़ा दुर्लभ कार्य कर रहा है तो हम कहते हैं कि हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। गर्व होना चाहिए माता पिता को कि ऐसा कार्य किया है जो बड़े बड़े पूर्व कालों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया। माता पिता गुणगान जरूर करते हैं, भक्तों का आदर जरूर करते हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं बनना चाहिए, बाकी दूसरे का बेटा ठीक है। ये किस तरह है कि हम भगवान से कहते हैं सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश हरे, केवल बोलने के लिए है। कुतुब मीनार आपका, आगरा का ताजमहल आपका, जो भी ये सब आपका, मेरा घर मेरा, वो आपका नहीं है। तो समर्पण पूरा नहीं, सारे बच्चे हाँ वो उसका बच्चा भक्ति कर रहा है, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है, लेकिन मेरा बच्चा वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये नरोत्तम दास ठाकुर ने बचपन से, और उनके माता पिता भी तैयारी कर रहे हैं विवाह करेंगे, और फिर धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि ये तो बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, इसको कोई रुचि नहीं भौतिक जीवन में, और ऐसे रहेगा तो क्या होगा आगे चलकर, हमारे वंश का क्या होगा। बड़ी चिंता रहती है लोगों को। एक बार किसी ने हमसे कहा था कि ऐसे अब ब्रह्मचारी बनाओगे तो वंश का क्या होगा, हमने कहा अच्छा है वंश समाप्त हो जाए, क्या करोगे वंश चला के। कौन से बड़े महान वंश से हैं जिसको महाप्रभु चलाना चाहते हैं या भगवान चलाना चाहते हैं। लेकिन लोगों का हृदय टूट जाता है कि अरे ऐसे कैसे कह दिया वंश समाप्त तो हो जाए, क्योंकि वंश चलाने की बड़ी चिंता है, अपने पुत्र के आनंद की चिंता नहीं है। अभी जो है उसकी चिंता करो, जो आगे आने वाला है उसकी क्या चिंता कर रहे हो, पता नहीं कैसे चोर डकैत आएंगे आपके वंश में, ऐसे वंश को चलाकर क्या होने वाला। तो नरोत्तम दास ठाकुर का पूरा ध्यान भगवान की। तो एक ब्राह्मण आया करते थे उनके घर में जो उनको महाप्रभु की लीलाएं सुनाते थे। ब्राह्मण भक्त थे और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ समय बिताना बड़ा आनंद आता था उनको, कथाएं करना, आकर बताते थे, वे सुनते थे लीलाओं को, उन्होंने सुन रखा था, तो आकर बताते थे महाप्रभु ने कैसे लीला की थी नित्यानंद प्रभु ने, अद्वैत आचार्य ने, और उसको सुनकर और प्रेम बढ़ता था नरोत्तम दास का। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रवण के द्वारा हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है, इसीलिए श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने नियम बनाए तो केवल नियम के लिए श्रवण नहीं करना चाहिए। कई कई मंदिरों में नियम बनाते भागवतम में नहीं बैठेंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा, ताकि जो लोग बैठे, बताइए इतनी बुरी अवस्था है, मतलब कि लोगों को ये कहना पड़ता है। हमारे तो प्रेम से आना चाहिए, भाग कर आना चाहिए सुनने के लिए कि कृष्ण कथा हो रही है, इसलिए नहीं कि अच्छी नींद आती है। कोई कोई स्पीकर बड़े अच्छे होते हैं, है ना, लोग उनको बहुत, प्रभु जी आपका लेक्चर क्या बात है, नींद बढ़िया आती है इसमें, बढ़िया लेक्चर होता है ना ऐसा। इसलिए हम कहते हैं हमारे जो मंदिर के ब्रह्मचारी हैं सही दृष्टि में गुड़ाकेश हैं। बोलो गुड़ाकेश जानते हैं, नींद के ऊपर जिन्होंने नियंत्रण पा लिया है, सही में रात को सोते हैं, सुबह जप में सोते हैं, उसके बाद भागवतम में सोते हैं, और उसके बाद कहते हैं प्रसाद प्रभु जी बहुत थक गया नींद आ रही है। इतना कंट्रोल किसका हो सकता, मतलब जब चाहे नींद आ जाती है, केवल ब्रह्मचारियों का हो सकता, लोगों को बाहर दवाई खानी पड़ती है इसके लिए। अरे तो अगर किसी को सोने की बीमारी है उनको ब्रह्मचारी बनाना चाहिए, बिल्कुल दूर हो जाती है, राइट। तो भगवान के प्रति आसक्ति ये श्रवण से होती है, जितना सुनेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत रुचि थी सुनने में, वो बैठकर कई कई घंटे सुना करते थे, और सुनते सुनते एक बड़े महान भक्त का वर्णन उस ब्राह्मण ने किया, श्रीनिवास। मिले नहीं है कभी, आगे चलकर मिलेंगे। श्रीनिवास बताने लगे कितना महान भक्त है, वो बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। तो उनकी पूरी जीवनी नरोत्तम दास ठाकुर को, उसको सुन सुनकर नरोत्तम दास के बहुत प्रेम बढ़ गया, मित्रता करने का भाव आया कि इनसे मिलना है, श्रीनिवास से। इसीलिए हमें श्रवण करना चाहिए, जीवन में बड़ा आवश्यक है, भक्ति के जीवन में हमारा जप बड़ा ध्यान पूर्वक होना चाहिए, हमारा श्रवण समर्पित भाव में होना चाहिए और हमारी सेवा बड़ी नम्रता से होनी चाहिए। बड़ी अगर इन चीजों को हमने जीवन में अपना लिया, भक्ति बड़ी सरल हो जाएगी। भक्ति है सरल, ऐसा नहीं है कि भक्ति बड़ी जटिल है, ये तो हमारा मन उसे जटिल बना देता है। इसीलिए प्रभुपाद कई बार पूछा करते थे, व्हाट इज द डिफिकल्टी, उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं थी लेकिन हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी है, अहंकार को संभालना, इच्छाओं को संभालना, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी। हम लोग बहुत बड़े बड़े वैरागी हो जाते हैं, त्याग कर देते हैं, परिवार त्याग देते हैं, इच्छाएं त्याग देते हैं, खाना त्याग देते हैं, लेकिन ये अहंकार बना रहता है, इच्छाएं बनी रहती हैं, उसको त्याग नहीं पाते। भक्तों के प्रति प्रेम, ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है और नरोत्तम दास ठाकुर इसको दिखला रहे हैं। जब श्रीनिवास के बारे में सुन रहे हैं तो बारंबार उनको बड़ा प्रेम जागृत हो रहा है। दरअसल भक्तों के बीच में प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम कि एक जब भक्त दूसरे को मिले तो उसके हृदय में सही में दिखावा नहीं, हम लोग तो दिखावा करते थे, खड़े खड़े प्रभु जी दंडवत प्रणाम हो गया बस बहुत है, सही में प्रेम नहीं होता हम लोगों को। एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है तो ऐसा कहते ना जैसे वो सागर उमड़ता है, तो हम लोग केवल कथाओं में ही सुनते हैं, नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी को देखा तो एक आनंद का सागर और अपने आप को संभाल नहीं पाए, मूर्छित हो गए। हम लोग नहीं होते, कितने भक्तों को मिलते कभी मूर्छित नहीं होते, हुए कभी आप लोग, शायद हुए होंगे पता नहीं, आनंद से। तो नरोत्तम दास के हृदय में इतना प्रेम, तो फिर ऐसे सुनते सुनते अब उनकी बड़ी तीव्र इच्छा हो रही कि उन्हें वृंदावन जाना है। गोस्वामियों के विषय में सुना, वृंदावन में रह रहे हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, तो बड़ी इच्छा हुई कि अब वृंदावन जाना। लेकिन यहां तैयारी हो रही है उनके विवाह की, कि उनका विवाह होगा जल्दी, ढूंढा जा रहा है, और पिताजी को थोड़ा सा शक हो गया कि ये लगता है किसी इस्कॉन भक्त के संपर्क में है या जो भी IVF में ट्रेनिंग ले रहा है या क्या हो रहा है, पता नहीं चलता ना, कभी कभी पेरेंट्स को बाद में पता चलता। तो उन्होंने एक गार्ड, एक सैन ये रख दिया, रक्षक, ध्यान रखना ये बाहर नहीं जाए। उनकी माता को भी बोल दिया बाहर ही नहीं जाना चाहिए। तब नरोत्तम दास घर में बैठे, अब सोचिए जिस व्यक्ति के हृदय में तीव्र इच्छा हो जाए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए घर एक बंधन है, घर ही क्यों, शरीर बंधन है, भौतिक जगत बंधन है, तो वो उसमें रह नहीं पा रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर। और ऐसे बंधन में इतना उनको कष्ट हो रहा था कि उनकी इच्छा है जाकर दर्शन करें, वृंदावन के दर्शन करें, वहां गोस्वामियों के दर्शन करें, उनसे श्रवण करें। धाम में जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए वहां रहने वाले ब्रजवासियों से, धामवासियों से श्रवण करना या गुरु से श्रवण करना। धाम यात्रा जैसे प्रभुपाद समझाया करते थे केवल स्नान करके आने के लिए नहीं है, चले गए स्नान कर लिया बहुत हो गया, धाम यात्रा का अर्थ है श्रवण करना, सुनना चाहिए। तो अब फिर एक दिन समय मिला, अपनी माता को थोड़ा सा, उन्होंने मां का हृदय थोड़ा कोमल होता है, तो पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे अपने लोगों के साथ, तो उस समय मां को थोड़ा सा उन्होंने बड़ा प्रेम से समझाया और फिर जो रक्षक था, गार्ड था, उसकी नजर बचाकर भाग गए घर से। परंपरा है, हम लोगों की कभी कभी लोग निंदा करते हैं, क्या करें, परंपरा का पालन कर रहे हैं ऐसे। तो भाग गए और ऐसा वर्णन है कि वो आना नहीं चाहते थे, पकड़े ना जाए, इसीलिए वेश बदला और 15 दिन तक सतत भागते रहे, रुके नहीं, मतलब कहीं मुझे पकड़ नहीं ले। और नवदीप नहीं गए क्योंकि पता था कि इसको बड़ा रुचि है नवदीप महाप्रभु की लीला, तो वहां नहीं गए, वृंदावन की ओर भागे ताकि पकड़ा नहीं जाऊं। सोचिए 15 दिन तक सतत, उनको बस ये था कि अब हो गया, अब मुक्त हुआ, अब वापस नहीं। तो ऐसे वो वृंदावन में आए नरोत्तम दास ठाकुर, और उनके आने के पहले ही जीव गोस्वामी और श्रीनिवास ये चर्चा कर रहे थे। श्रीनिवास के मन में हुआ, बड़ा आनंद हुआ जिस दिन नरोत्तम दास ने प्रवेश किया वृंदावन में। श्रीनिवास के मन अचानक कोई आनंद आ गया, सोचने लगे क्या है ये, शायद मैं किसी से मिलने वाला हूं, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने वाला। तो उन्होंने जाके जीव गोस्वामी से कहा कैसे मेरे मन में आनंद आ रहा है। तो जीव गोस्वामी ने कहा हाँ शायद कोई श्रेष्ठ भक्त आने वाला है और महाप्रभु ने कहा था नरोत्तम आएगा, तो हो सकता है वो आने वाला। और फिर कुछ ही समय में नरोत्तम आए, श्रीनिवास को समाचार मिला कि जीव गोस्वामी ने बुलाया है और एक कोई राजकुमार आए हैं और जीव गोस्वामी उनका बड़ा आलिंगन कर रहे हैं, बड़ा स्वागत कर रहे हैं। श्रीनिवास भाग कर आए और पहली भेंट हुई श्रीनिवास और नरोत्तम की। नरोत्तम ने जिन्होंने सुना था श्रीनिवास के बारे में बार बार, तो बड़ा प्रेम आया, आलिंगन किया, आगे चल के बहुत अच्छे मित्र बने दोनों। तो इस तरह श्रीनिवास और नरोत्तम वहां रहने लगे। जीव गोस्वामी उनको स्वयं लोकनाथ गोस्वामी कर गए, क्योंकि जानते थे महाप्रभु ने कहा था कि वे दीक्षा देंगे, तो लोकनाथ गोस्वामी के पास लेकर गए। और लोकनाथ गोस्वामी ने देखा नरोत्तम दास ठाकुर को, बड़े प्रसन्न हुए, महाप्रभु का आदेश था। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, थोड़े समय में तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो ऐसे, और हमने वर्णन भी सुना है कि फिर कैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़ी नम्र सेवा की अपने गुरु की, ये दर्शाने के लिए कि गुरु की सेवा हमारे भक्ति के जीवन का आधार है। एक शिष्य को नम्रता, जिज्ञासा और सही सेवा का भाव ये निश्चित होना चाहिए ताकि वो गुरु के प्रति अपने समर्पण को पूर्ण कर सके, और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण से ही कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी के प्रति समर्पण किया, दीक्षा ग्रहण की और जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने जीव गोस्वामी के अधीन रहकर अध्ययन किया नरोत्तम दास ठाकुर ने, और फिर सबसे पहली ग्रंथ वितरण पार्टी जीव गोस्वामी ने भेजी, जिसमें ये तीनों लोग थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब ये लोग पहुंचे ग्रंथों को लेकर, ये सब आपने सुना है कि एक चोरी हो गए ग्रंथ, वो भी एक वहां के राजा जो एक डाकू ही था उसने चोरी कर लिया। और फिर श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि ठीक है आप लोग जाइए, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर को भेज दिया आगे, और वो गए राजा को, राजा से सारे जो ग्रंथ है वापस लेने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर, उसके बाद उनका बहुत भ्रमण शुरू हुआ, उन्होंने कई शिष्य बनाए नरोत्तम दास ठाकुर ने, और सबसे पहला गौर पूर्णिमा उत्सव ये नरोत्तम दास ठाकुर ने किया था खेचरी ग्राम में, पहला। हम लोग अभी गौर पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन पहला उत्सव उन्होंने करीब महाप्रभु के जाने के 50 या 60 साल बाद पहला उत्सव उन्होंने किया गौर पूर्णिमा उत्सव। और ये बहुत बड़ा उत्सव था, बहुत से वैष्णव आए, बड़े वरिष्ठ वैष्णव आए, जानवा माता जी आई, अन्य जानवा माता उस समय वैष्णवों की प्रमुख थी, वैसे कई लोग आए, बहुत सुंदर उत्सव हुआ। और उसके बाद बहुत भ्रमण किया नरोत्तम दास ठाकुर ने, बहुत स्थानों पर गए, कई भक्त बनाए। विशेषतः जब वो भ्रमण करते करते अलग अलग स्थानों में गए और सुना करते थे भक्तों के विषय में, कई स्थानों पर ब्रज में भी जीव गोस्वामी ने उनको सारे स्थलियों का दर्शन कराया था, ब्रज की स्थलियों का, जहां जहां कृष्ण ने लीला की। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बहुत स्थानों पर हुए, और अन्य स्थान पर भी जहां जहां वो भ्रमण करते वहां भगवान की लीलाओं को वो स्मरण किया करते थे। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर काफी समय तक रहे, और उनकी अंत की लीला भी बहुत श्रेष्ठ है। अंत में ऐसा हुआ था जब वे अपना देह छोड़ना चाहते थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं, भजन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रार्थना इत्यादि बहुत सुंदर हैं। तो जब अंत की लीला बहुत सुंदर है उनकी, कि जब काफी समय हो गया और धीरे धीरे वे देखने लगे, दरअसल जब वो पहली बार वृंदावन पहुंचे थे, उनके हृदय में बड़ी तीव्रता थी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इत्यादि से मिलने की, तो पहले जब ब्रज में पहुंचे तो वे मथुरा चले गए। वहां पर उनको एक ब्राह्मण मिले, चर्चा हुई और वहां उनको पता चला कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो जा चुके हैं, वो अब है नहीं, उनको दर्शन नहीं होगा। तो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि वो आए थे इतने समय से, उनका सुन रहे थे, उनकी इच्छा थी, लेकिन अब रूप गोस्वामी नहीं, सनातन गोस्वामी नहीं है, तो खैर जीव गोस्वामी तो थे उस समय। तो ऐसे ही आगे चलकर धीरे धीरे वे सुनने लगे कि कैसे एक एक भक्त सब अब इस पृथ्वी से जा रहे हैं। भक्तों का पृथ्वी पर बना रहना बहुत अनिवार्य होता है पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए, नहीं तो इतना पाप हो जाएगा कि फिर से जैसे वराहदेव के समय पृथ्वी नीचे चली गई थी ऐसा हो जाएगा। तो एक एक करके भक्त जा रहे थे, ये बहुत बहुत दुख देने वाला था नरोत्तम दास ठाकुर को। हम लोग भी अपने आंदोलन में देखते हैं कि कुछ समय पहले तक बहुत सारे महान वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य इस पृथ्वी पर थे, अब धीरे धीरे कमी हो रही है। एक बार हमें ध्यान है, हम लोग एक मीटिंग में थे तो उसमें चर्चा शुरू हुई, प्रभुपाद जी के शिष्य थे सारे, वे आपस में चर्चा करने लगे, हम लोग तो केवल सुन रहे थे। तो वो करने लगे कि बस 5 साल और, किसी ने कहा 20 साल, मैंने 20 साल नहीं 5 साल 6 साल। तो चर्चा ये हो रही थी कि उस समय के बाद हम लोग नहीं रहेंगे, वे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसको देख, उसको सुनकर हमारे हृदय में बड़ा डर पैदा हो गया कि कैसे वो स्थिति होगी जब इस पृथ्वी पर प्रभुपाद जी के कोई शिष्य नहीं रहेंगे। प्रभुपाद जी के शिष्य में अनुयायी तो रहेंगे, प्रभुपाद जी के शिष्य, तो कितना भयावह वो स्थिति होगी। आज हम लोगों को वो स्मरण नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिए वो सामने है, बहुत से शिष्य हैं, और इसीलिए हम लोग उनकी उपस्थिति को बड़ा सस्ता ले लेते हैं। हमें पता है आज आए हैं, कल फिर आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन आप सोचिए कि वो कैसा समय होगा। आज हम लोग उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन कल ये नहीं होगा, तो ये बहुत भयावह स्थिति है। इसीलिए भक्तों को सदैव भगवान के जो महान भक्त हैं, तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि उनके संपर्क में रह सकें, जितना समय मिले उनसे जो सीख सकें वो अच्छा। अभी बड़ी गंभीरता से उनके संग को लेना चाहिए, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, उनसे आसक्ति बढ़ानी चाहिए। भगवान कपिल कहते हैं भागवत में कि जितनी हमारी आसक्ति साधुओं से होगी वो हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोलेगी। प्रसंगान अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु स एव साधु शुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कि ये जो बंधन है इस जगत के, स्वाभाविकता जो भी आसक्तियां हैं वो बंधन का कारण है, लेकिन वही आसक्ति स एव साधु शुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो वही साधुओं के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ऐसा हमें भगवान के भक्तों के, तो ये भक्तों के प्रति प्रेम को अब नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट कर रहे थे। भक्तों से प्रेम, भगवान से प्रेम, ये बहुत अनिवार्य है। तो कैसा प्रेम होना चाहिए, हम लोग आपस में रहकर कैसे प्रेम कर सकते हैं भक्तों से, और क्यों करना चाहिए भक्तों से प्रेम? क्या सीधे कृष्ण से प्रेम नहीं हो सकता? क्या आवश्यकता है भक्तों की? हमें करना, हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, भक्ति का प्रेम का मार्ग है, तो फिर ये करो वो करो नियम पालन करो, ये कहां कहा गया है? कृष्ण से प्रेम करने का पहला मार्ग है कि हमें नियम पालन करने चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती। तो कोई कह सकते हैं ऐसा कैसे है? मान लीजिए इस जगत में कोई कहे कि आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप सुबह 4:30 बजे उठो, मेरे नाम का 2 घंटा जप करो, तो आप बोलोगे आप अपने घर पर रहो, हमें कोई चिंता नहीं है, कौन उठेगा, इतना प्रेम थोड़ी है। लेकिन यही कहा जाता है ताकि हृदय शुद्ध हो जाए, और शुद्ध हृदय से हम भगवान को प्रेम कर सकें, इसलिए नियम की आवश्यकता है। तो ऐसे नियम का पालन हमें करना चाहिए, और दूसरी चीज, भक्तों से प्रेम करना सीखना चाहिए। हर भक्त बहुत दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि इस जगत में 99.9% लोग नराधम हैं। ये प्रभुपाद लिखते हैं, मतलब 0.01% भक्त हैं केवल, बाकी सारे नराधम हैं। तो बाकी पॉइंट तो एक एक भक्त वो 0.01% में आ रहा है, मतलब कितना दुर्लभ है। कैसे हमें आचरण करना चाहिए भक्तों से, कैसा प्रेम होना चाहिए। और जब तक हैं भक्त तब तक, क्योंकि हम लोग द्वेष घृणा इन मनमुटाव इनमें अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन कब तक। फिर हमें पता चलता है वो भक्त नहीं है। जैसे एक बार एक भक्त ने हमें फोन किया, रो रहे थे फोन पर, हमने कहा क्या हुआ, बोले पिताजी की मृत्यु हो गई। तो हम समझा रहे थे भाई ये तो ठीक है होता है, तो बोले नहीं उसलिए मैं नहीं रो रहा हूं, तो मैं भी जानता हूं कि मृत्यु तो होनी है, उसका मुझे इतना दुख नहीं है। तो फिर दुख काहे का है, बोले दुख ये है कि जब वो थे तो मैं उनसे ठीक से आचरण नहीं कर रहा था, अब मुझे वो सब याद आ रहा है कि मैंने उनसे ठीक से आचरण नहीं किया, अब वो रहे नहीं। तो हमने कहा अच्छी बात है कि आपको ये पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब जो हैं उनके साथ अच्छा आचरण करना शुरू करो ताकि इसका पश्चाताप आगे ना हो। जब रावण का वध हो गया तो उस समय विभीषण से कहा गया कि जाकर आप अंतिम संस्कार करो, तो विभीषण ने मना कर दिया, आपका विरोधी था, आपके प्रति अपराध किया, इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो भगवान राम ने कहा कि द्वेष कब तक, अब वो व्यक्ति ही नहीं है तो फिर उससे द्वेष करने का लाभ क्या है। तो इसीलिए द्वेष घृणा मनमुटाव ये भक्तों में आपस में निकाल देना चाहिए। हां एक दूसरे की कमियां हो सकती हैं, एक दूसरे में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रेम और सहयोग से एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तब कृष्ण प्रसन्न होंगे। जैसे प्रचेताओं को उन्होंने भागवत में कहा है, जब प्रचेता तपस्या कर रहे थे भगवान प्रकट हुए, तो प्रचेताओं को यह नहीं कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारे बल से प्रसन्न हो गया, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे ज्ञान से प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हुआ क्योंकि आप सब मिलकर सहयोग के से रह रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हम लोगों को आपस में इस प्रेम की भावना को बढ़ाना। तो नरोत्तम दास ठाकुर अब बार बार सुन रहे थे कि ये चले गए ये चले गए। आप भजन में हम लोग सुनते हैं ना, कहां मोरस रूप स्वरूप कहां सनातन। तो फिर अब उनकी इच्छा नहीं रही इस जगत में रहने की, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, काफी शिष्य थे उस समय, कि मुझे स्नान के लिए ले चलो। स्नान किया करवाया और अचानक उनको बहुत तेज बुखार हो गया और उन्होंने कहा मेरी चिता बनाओ। तो अब सोचिए सब लोग घबरा गए ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा चिता बनाओ मैं अपने प्राण त्यागूंगा। तो खैर आदेश का पालन किया गया, उनकी चिता बनाई गई और उस पर फिर उनको एक आसन पर बिठाया गया और वे एकदम उन्होंने बात करना बंद कर दिया। कई बहुत दिनों से बंद था, 3 दिन बिल्कुल बात नहीं। तो जब ऐसे वो रहे, वो अपने देह को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ ब्राह्मण वहां पर थे जो उनकी निंदा करने लगे। वो कहने लगे कि देखो ये जो, क्योंकि जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो ब्राह्मण कुल से नहीं है, कायस्थ परिवार से हैं। तो कहने लगे कि देखो इन्होंने ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया था और इसी के कारण इसके प्रभाव इसके पाप का फल है कि आज उनको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। देखो अब वो जलेंगे, कष्ट होगा, ऐसा होगा। तो ये सुनकर जो उनके शिष्य थे वो बड़े दुखी हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे ऐसे कैसी निंदा कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपने कुल का बड़ा अहंकार हो जाता है, हम ब्राह्मण हैं, हम गोसाई परिवार से हैं इत्यादि। जैसे जब श्रील प्रभुपाद के शिष्य वृंदावन में थे तो एक समय अन्य मंदिरों में गए तो वहां के जो पुजारी इत्यादि थे ब्राह्मण, उन्होंने देखकर उनको कहा बहुत अच्छा, विदेशी लोग थे लोग, बहुत अच्छा है, आप लोग अगर इसी तरह अच्छे से जप वगैरह करते रहें, भक्ति करते रहें, तो अगले जन्म में आपको हमारे जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। बट लोग ने आके प्रभुपाद से कहा। प्रभुपाद ने कहा उनको कहो कि अगर वो अच्छी तरह ऐसे भगवान की सेवा करते रहे तो अगले जन्म में उनको इस्कॉन में जन्म मिलेगा इस्कॉन का। तो ब्राह्मण कभी कभी अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ कुल से हैं, कुल का अहंकार हो जाता है उन्हें, तो इसीलिए वे लोग निंदा करने लगे। तो निंदा करते करते तो जब इनके भक्तों को, इनके शिष्यों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने जाकर नरोत्तम दास से कहा कि देखिए आप तो कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग निंदा कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या क्या करें, तो आप कुछ कीजिए। तो ये सुनकर नरोत्तम दास ठाकुर, जो कई दिनों से बोले नहीं थे, खाया नहीं था, बड़े कमजोर, तुरंत उठ गए और फिर उठकर चल दिए, ठीक है अब नहीं करेंगे, मतलब मरने का प्रोग्राम कैंसिल। उचिता वैसे के वैसी रह गई, नरोत्तम दास ठाकुर चल दिए, चलो। तो उन लोगों को दिखाने के लिए कि ये कोई दंड नहीं मिल रहा था, तो मैं अपनी इच्छा से कर रहा था। तो जब उन्होंने ऐसा देखा, लोगों ने, ब्राह्मणों ने आश्चर्यचकित हो गए कि जिस व्यक्ति ने कुछ खाया नहीं, कुछ तीन दिन से कुछ बोल नहीं रहे थे, लग रहा था कि बड़ा कष्ट हो रहा है, वो आराम से उठकर चल दिए, कोई चिंता नहीं। फिर उन्होंने बहुत क्षमा मांगी, उनके शिष्यों से क्षमा मांगी, फिर वो लोग लेकर आए नरोत्तम दास ठाकुर के पास, उनसे क्षमा मांगी, नरोत्तम दास ठाकुर ने क्षमा कर दिया। क्षमा ये एक वैष्णव का लक्षण है, क्षमा करना, हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। साधारणतः हम लोग क्षमा नहीं करते हैं, हमारे अंदर वो सहनशीलता नहीं है जिससे हम क्षमा कर सकें। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने क्षमा कर दिया कि ठीक है। फिर कुछ समय तक रहे और उसके बाद फिर अब उन्होंने निर्णय किया कि अब उन्हें अपने देह को त्यागना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे गंगा में स्नान के लिए ले चलो। तो गंगा में स्नान कर रहे हैं और फिर उन्होंने अपने दो शिष्यों को कहा कि आके थोड़ा मेरी बॉडी को मसाज करो। तो गंगा में ही हैं तो दो शिष्य आए मसाज करने के लिए, जैसे ही हाथ लगाया सारा शरीर पिघल गया और ऐसा वर्णन है कि वो दूध जैसा हो गया और गंगा में ही वो समा गए। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने देह को छोड़ा। अलग अलग आचार्यों ने देह छोड़ने के महत्व को, स्थान को, तरीके को समझाया है, किस तरह से छोड़ना चाहिए। जैसे एक रामानुजाचार्य के गुरु थे, तो उनको कहीं कष्ट हुआ था, एक राजा ने पकड़ लिया था, वो वापस आ रहे थे श्रीरंगम की ओर। तो श्रीरंगम अभी पहुंचे नहीं थे, रास्ते में ही थे, आधे रास्ते पहुंचे थे, जंगल में थे, अचानक बड़े वृद्ध थे तो गिर पड़े और उन्होंने कहा कि बस अब इससे और ज्यादा जाया नहीं जाएगा, हम यहीं पर अपने प्राण त्यागेंगे। तो उनके शिष्यों ने कहा थोड़ा सा रुकिए, बस अभी हम लोग रंगनाथ जी के पास पहुंच जाएं, श्रीरंगम पहुंच जाएंगे, आप धाम में प्रवेश करके फिर छोड़िएगा अपना देह, यहां मत छोड़िए, जंगल में ये कोई धाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यहीं पर अपना देह छोड़ूंगा, ये दिखलाने के लिए कि कृष्ण भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भगवान का भक्त है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां पर अपना देह छोड़ता। तो स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, चेतना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उन्होंने वहीं अपना देह छोड़ा, ये दिखलाने के लिए कि भगवान का अगर सतत चिंतन है तो हर स्थान वृंदावन है। लेकिन हम देखते हैं कई आचार्यों ने वृंदावन में छोड़ा, श्री प्रभुपाद ने वृंदावन में छोड़ा, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने धाम में नहीं छोड़ा। तो ऐसे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग चीजें बताई हैं। विशेषतः जब कोई अपना देह त्यागते हैं, प्रमुख आचार्य किसी संप्रदाय के या अन्य लोग, अन्य आचार्य, तो वे अपने सारे शिक्षाओं का सार उस समय पर प्रस्तुत करते हैं। जैसे रामानुजाचार्य भी जब अपना देह छोड़ रहे थे तो तीन दिन तक अपने शिष्यों को प्रवचन कर रहे थे और करीब 85 उपदेश उन्होंने दिए, जिनमें से अधिकतर वैष्णव सेवा पर है। और श्रील प्रभुपाद भी जब अपना देह छोड़ रहे थे, उन्होंने भी सब शिष्यों को बुलाया था। और प्रभुपाद, आप लोग वो वीडियो देखा होगा आपने, प्रभुपाद के जाने के पहले कुछ समय प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं। कैसे हो सकता है, अनुवाद करने के लिए मन, शरीर सारा सही चाहिए, केवल संस्कृत में सुनना और उसको बोलना, अनुवाद करना संभव नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो ऐसी अवस्था में है कि हिल नहीं सकता। तो प्रभुपाद ने दिखलाया कि भले शरीर जर्जर हो गया है, चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध है, कोई कमी नहीं, उसमें कोई कष्ट नहीं। अन्यथा ऐसी अवस्था में कौन अनुवाद कर सकता है? श्रीमद् भागवत का वो भी प्रभुपाद ने करके दिखलाया। और उनकी शिक्षाओं में अब देखिए, प्रभुपाद जाने के कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले वो कहते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है, इसे जानना यही कृष्ण भावनामृत है, कि सब कुछ कृष्ण का है। तो हम लोगों को जीवन में ये चीजें याद रखनी चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का है, हमें उनकी कृपा से मिला है और ये उनकी सेवा के लिए है। अगर ये चीजें याद रखेंगे तो न कभी अहंकार होगा कि ये मेरा है, मैं और मेरा से दूर चले जाएंगे, और ना ही कभी इस जगत को भोग करने की इच्छा होगी, क्योंकि जो है वो कृष्ण का है, उनकी सेवा के लिए है। तो ऐसे अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है, वैष्णवों की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, कृपा की याचना करते हैं कि जिनके निकट जाने से पाप दूर चले जाते हैं, और ये हम प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं। ऐसे ऐसे लोग उनके पास आए जो कहना चाहिए महापापी हैं, लेकिन सारे पाप दूर हो गए। दर्शने पवित्र करो एतो मार गुण। तो इस ऐसे यहां वैष्णवों का गुणगान नरोत्तम दास ठाकुर ने किया, स्वयं महान वैष्णव है। तो आज के दिवस पर हम ये प्रार्थना कर सकते हैं नरोत्तम दास ठाकुर से, जिस प्रार्थना को हमने दोहराया कि प्रति जन्म में कोरी आशा चरणे रधूली, नरोत्तम करो दया अपनार बोली। तो हम लोग भी यही प्रार्थना करने चाहिए कि जहां भी रहें, जिस अवस्था में रहें, वैष्णवों का संग बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, और उनकी कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का